तभी इप्सिता ने नंदिनी के कंधे पर मारते हुए कहा, शट अप, अब तुम हमें रानी सा बोलकर छेड़ो मत। नंदिनी ने इप्सिता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना छेड़े, और वैसे भी अब तो तू सच में रानी सा बन गई है, तो अब मुझे तेरी थोड़ी इज्जत करनी होगी, है ना। हाँ तो बताइए रानी सा, कल सुबह की ब्रेकफास्ट में आप क्या लेंगी। नंदिनी अपने फुल ड्रामेबाज वाले मूड में आ गई थी और वो इप्सिता को चिढ़ाती ही जा रही थी। तभी इप्सिता ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, जस्ट स्टॉप इट नंदिनी, अगर तुमने हमें छेड़ना बंद नहीं किया तो हम। नंदिनी ने इप्सिता की ये बात सुनी और उसने उसे कसकर अपने गले लगाते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, नहीं छेड़ूंगी। उदय और अभिमन्यु वही आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उदय ने कहा, और अब वहां राजमहल में सब कुछ ठीक तो है ना। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब सब कुछ वहां ठीक है। तभी उदय ने कहा, हम जानते हैं अभिमन्यु, आप हमारी इप्सिता का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उसे ज़्यादा किसी भी चीज़ की टेंशन मत दीजिएगा, क्योंकि हमारी इशू बहुत मासूम है, उसे राजनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना ही वो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है। और जहाँ तक हम जानते हैं, राजमहल में आपके चाचा चाची अलग अलग तरह की। उदय बोल ही रहा था कि अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, उदय आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इप्सिता अब हमारी जिम्मेदारी है और हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि अब कोई भी उनकी तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता है, उनकी पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है, आप बस हम पर भरोसा रखिए। उदय अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो गया और उससे बाकी की बातें करने लगा। वहीं नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे उदय और अभिमन्यु से दूर खींचकर बालकनी में लेकर आकर खड़ी हो गई। उसने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे कई सारी बातें करनी थी, लेकिन मैं उदय और जीजू के सामने ये सारी बातें नहीं कह सकती, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी थी। नंदिनी ने जैसी ही इप्सिता से ये बात पूछी, इप्सिता का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। नंदिनी ने जैसी ही इप्सिता के लाल चेहरे को देखा, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, कम ऑन यार, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझसे इतना क्या शर्मा रही हो। इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनकर कहा, शर्मा नहीं रही हूँ, और क्यों बताऊँ मैं तुझे अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में। तूने मुझे बताया कभी अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में? जब हम मुंबई में थे तब भी तूने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, और अब मुझसे पूछ रही है। जैसे ही इप्सिता ने ये बात कही, नंदिनी उसकी तरफ देख कर बोली, अरे तुमने कभी पूछा ही नहीं तो मैं क्या बताती। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है, पहले तू अपने फर्स्ट नाइट के बारे में बता, फिर उसके बाद मैं भी बताऊंगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही अपने फर्स्ट नाइट की बात कर रही थी, तभी उदय और अभिमन्यु दोनों बालकनी में आए। उदय ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, क्या बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच। जैसे ही नंदिनी ने उदय की आवाज़ सुनी, वो बोलते बोलते चुप हो गई और उदय की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, हम तो बस अपनी फर्स्ट। नंदिनी बोलने चाह ही रही थी कि इप्सिता ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। इतना कहकर इप्सिता ने नंदिनी को आंखें दिखाई और नंदिनी इप्सिता की तरफ देखकर चुप हो गई। उदय ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से फर्स्ट शब्द सुना, वो हैरानी से उसे घूरते हुए देखने लगा। तभी उसने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा बहुत देर हो गई है, चलो अब इप्सिता और अभिमन्यु को आराम करने देते हैं। नंदिनी ने उदय की बात सुनी और उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे इशू से और बात करनी थी। उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं वैसे भी वो दोनों काफी थक गए हैं, चलिए नंदिनी। इतना कहकर उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचकर कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, आप ही कमाल करती हैं नंदिनी, उन दोनों को थोड़ा एक साथ टाइम स्पेंड करने दीजिए, या आप ही इशू से बात करती रहेंगी। नंदिनी ने जैसे ही उदय की बात सुनी, वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी उदय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए। नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ओके ठीक है, हम चलते हैं। इतना कहकर उदय और नंदिनी दोनों उसके कमरे से बाहर निकल गए। इप्सिता वहीं बालकनी पर खड़ी थी, तभी अभिमन्यु ने उसे बैक हक करते हुए कहा, क्या हुआ आपको, नींद नहीं आ रही क्या इप्सिता। इप्सिता ने धीरे से नामे सिर हिलाया। तभी अभिमन्यु इप्सिता के कान के पास जाकर धीमी आवाज में बोला, नींद नहीं आ रही है तो। इतना कहते ही अभिमन्यु इप्सिता की गर्दन पर किस करने लगा। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस किया, उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं हमें नींद आ रही है, चलिए चलकर सोते हैं। इतना कहकर इप्सिता बेड की तरफ जाने लगी। तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसकी कमर में अपना हाथ डालते हुए कहा, अभी तो आप कह रही थी कि आपको नींद नहीं आ रही, और अब जब हम रोमांस के मूड में है तो आपको नींद आने लगी, ये तो ठीक नहीं है। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी, वो धीमी आवाज में बोली,
रोमांस हम घर पहुंचकर करेंगे, यहाँ पर अभी अच्छा नहीं लगता। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की ये बात सुनी, उसने उसके करीब जाकर कहा, क्यों, अब हम यहाँ पगफेरे की रस्म पूरी करने आए हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। इतना कहकर अभिमन्यु ने इप्सिता को अपनी गोद में उठा लिया और सीधे उसे बेड की तरफ ले गया। उसने जैसे ही इप्सिता को बेड पर लिटाया, इप्सिता उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इप्सिता को इस तरह मुस्कुराते देखकर अभिमन्यु ने इप्सिता के होठों के करीब जाकर उसके होठों को किस करना शुरू किया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। वहीं दूसरी तरफ उदय नंदिनी को अपने रूम में लेकर आया और उसने नंदिनी के कमर को पकड़ते हुए कहा, नंदिनी आप सच में बिल्कुल ही ना समझ है। नंदिनी ने जैसे ही उदय की ये बात सुनी, उसने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, नहीं हम ना समझ नहीं है, एक्चुअली हम इप्सिता से बात करने में इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि हमने सोचा ही नहीं कि उन दोनों को थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दें। नंदिनी इतना बोल ही रही थी कि उदय ने नंदिनी की कमर पर अपना हाथ कसते हुए उसे अपने करीब खींचकर कहा, ठीक है आप बहुत समझदार हैं। इतना कहकर उदय ने उसके गाल पर किस कर लिया। नंदिनी उसे इस तरह किस करते देखकर हल्के से मुस्कुराई। उदय ने नंदिनी के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, अब हम भी थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें। नंदिनी ने जैसे ही उदय की बात सुनी, उसने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हम बहुत थके हैं। उदय ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी बेड की तरफ जा ही रही थी कि उदय ने नंदिनी को कसकर पकड़ते हुए कहा, आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं, कल भी आपने ऐसे ही बहाना बनाया था। इतना कहकर उदय ने नंदिनी के दोनों गालों पर अपना हाथ रखा और उसे बड़े प्यार से किस करने लगा। नंदिनी ने भी उदय के चेहरे की मुस्कुराहट को देखा तो वो उदय को रोक नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ समर्थ और अर्पिता महल के गार्डन में बैठे हुए थे और दोनों आपस में एक दूसरे से अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। समर्थ ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, कल अभिमन्यु जैसे ही वापस आएगा, हम सबसे पहले उससे हमारे बारे में ही बात करेंगे। अर्पिता ने उसकी बात सुनकर तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम वैसे भी नहीं चाहते कि भाई साहब को ये बात कहीं और से पता चले और फिर वो हम दोनों से नाराज हो जाएं।
अर्पिता की बात सुनकर समर्थ ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं वो हमसे नाराज नहीं होगा, वो आपसे बहुत प्यार करता है और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम कल ही उसे ये सारी बातें बताएंगे और उसके बाद हम अपने घर में भी जाकर सबको ये बात बता देंगे, फिर बहुत जल्दी हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बन जाएंगे। अर्पिता ने जैसे ही समर्थ की बात सुनी, वो काफी इमोशनल हो गई। समर्थ ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, और फिर हम आपको यहाँ से अपने घर ले चलेंगे और वहाँ पर हम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अर्पिता समर्थ की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो गई थी और उसने भी समर्थ के सीने पर अपना सिर रख दिया। समर्थ ने वहीं गार्डन में ही बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह इप्सिता और अभिमन्यु वापस महल जाने के लिए सूर्यवंशी हवेली से बाहर निकल रहे थे और सभी लोग उन्हें छोड़ने के लिए घर के बाहर तक आए। इप्सिता के साथ उनके घर वालों ने कई सारा शगुन भिजवाया। उदय ने उन सारे सामान को गाड़ी में रखवा दिया और वो इप्सिता के बगल में आकर खड़ा हुआ। उसने इप्सिता को अपने गले लगाते हुए कहा, ध्यान रखना अपना इप्सिता। इप्सिता ने अपना सिर हिलाया और तभी इप्सिता के डैड ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, इप्सिता बेटा ये आपका घर है, इसे कभी भूलिएगा मत और हमसे मिलते आते रहिएगा। इप्सिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। तभी इप्सिता की मम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने इप्सिता को अपने गले लगा लिया। नंदिनी ने अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जीजू मेरी बेस्ट फ्रेंड का ध्यान रखिएगा। अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर, अब हम चलते हैं। टू बी कंटिन्यूड।